शत्रुपा देवी विक्रम को देखकर कुछ कहने की कोशिश करने लगी। वैशाली का घूमर उनको डर के साथ साथ बेहद उलझन में डाल रहा था। वे क्रम आ खिल अखिल, लाख कोशिश करने के बावजूद उनके होठों से ये दो नाम निकले। अखिल को तो अंतिम बार में उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा था। विक्रम ने हैरान नजरों से उनकी तरफ देखा। आप भाईसा को बुला रही हैं? विक्रम को लगा जैसे कि उसके कान बजे हैं। शत्रुपा देवी भला कैसे अखिल को याद कर सकती हैं, इसलिए उसने कन्फर्म करने के लिए पूछा। शत्रुपा देवी ने जल्दी से हाँ में अपनी पलकें झपका दी, लेकिन अखिल का नाम सुनते ही वैशाली के घूमर को ब्रेक लग गया था। उसने घूरती हुई नज़रों से शत्रुपा देवी की तरफ देखा, पर शत्रुपा देवी उसकी तरफ ना देखकर सीधे विक्रम की आंखों में देख रही थी। उसकी रुकने का एहसास बंद होते हुए घुंघरू की आवाज़ से उन्हें हो गया था, और उन्हें ये भी एहसास हो रहा था कि वैशाली अपनी तेज़ नज़रों से उनको देख रही है। पर फिलहाल में सब कुछ इग्नोर करते हुए अपनी आंखों से उन्होंने विक्रम से बहुत कुछ कह दिया था। उनकी आंखों में एक इंतज़ार था, एक रिक्वेस्ट थी। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए, भाई सा आएंगे, मेरा दिल कहता है वो आपसे मिलने ज़रूर आएंगे। मैं उनको ढूंढने के लिए ज़मीन पाताल एक कर दूंगा, मैं किसी तरह से उनको आपके पास लेकर आऊँगा। विक्रम ने शत्रुपा देवी के हाथों को मजबूती से अपने हाथों में लेते हुए कहा। शत्रुपा देवी ने एक राहत की सांस ली थी। वैशाली की बातों से उन्हें इतना तो अंदाज हो चुका था कि अखिल कुछ ऐसा जानता है जिसके कारण वैशाली उसे नापसंद करती है। क्या पता अखिल वैशाली को रोक ले, मन में एक आस सी लगी थी। फिलहाल में तो आप मेरे साथ घर चलिए, मैं अब आपको यहाँ नहीं रहने दूंगा, शत्रुपा देवी के मन के भाव से अनजान विक्रम ने उनके हाथों पर अपना हाथ फेरते हुए कहा। अपनी बड़ी मासा को इस तरह से मशीनों में घिरा हुआ अस्पताल के कमरे में देखकर उसके दिल पर क्या बीत रही थी वो बयान नहीं कर सकता था। वो किसी तरह से उनको यहाँ से निकालना चाहता था। शत्रुपा देवी की आंखों में सवालिया निशान तैरने लगे थे। आप चिंता मत कीजिए, आपकी जो दवाइयाँ और जो ट्रीटमेंट होगी वो राजमहल में ही होगी, मैं पूरी व्यवस्था करवाऊंगा, पर अब मैं आपको अपने से दूर नहीं रहने दूंगा। मैंने बहुत अपनों को खोया है, पर आपको खोने की ताकत मुझ में नहीं है। भाई सब ही आएंगे और अब हम उन्हें कहीं जाने नहीं देंगे। मैं आ गया हूं ना बड़ी मासा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मुझ पर विश्वास रखिए, विक्रम धीरे धीरे बोलते हुए उन्हें समझा रहा था। शत्रुपा देवी की आंखों से निरंतर आंसू बहने लगे थे। जिसको घर से निकलने के लिए न जाने कितने जतन किए थे, आज उसी को वापस बुलाने के लिए उसका नाम लेते वक्त कितनी हिम्मत करनी पड़ रही थी, पर अफसोस अपने दिल की तकलीफ वो किसी से कह भी नहीं पा रही थी। पश्चाताप के आंसू सारे बंद तोड़कर निकलते ही जा रहे थे। जिस तरह से विक्रम ने अखिल का नाम लिया था उसको सुनकर उन्होंने उसके शब्दों की तड़प महसूस कर ली थी। मन में एक और पछतावा जुड़ गया, मैंने राम और लक्ष्मण को अलग किया, शायद इसीलिए मेरी ये दुर्गति हुई। उन आंसुओं को पहुंचते हुए विक्रम का दिल भी डूबने लगा था। आंखें भर आई थीं और किसी भी पल वो रो सकता था। अपने मन के भाव को छुपाते हुए उसने शत्रुपा देवी के हाथ को अपने सर से लगाया और कुछ झूठी नाराजगी के साथ कहा, अगर अब की बार आप रोई ना तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं वापस चला जाऊंगा। कहाँ मुझे उम्मीद थी कि आप हंसते मुस्कुराते आरती के थाल के साथ मेरा स्वागत करेंगी, और आप देखिए बिस्तर पर आ गई हैं। अब रोना बंद कीजिए, मैं आपके घर ले जाने की तैयारी करता हूँ, हम दोनों एक साथ घर चलेंगे। शत्रुपा देवी ने हाँ में पलकें झपका दी, लेकिन आंसू लगातार बहते ही जा रहे थे। अब विक्रम के लिए वहां खड़ा रहना मुश्किल हो गया था। वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गया, और विक्रम के बाहर निकलते ही वैशाली झूम झूम कर नाचने लगी। शत्रुपा देवी के कानों में उसके घुंघरू की आवाज चुभ रही थी। अपना रोना भूलकर वो बिस्तर पर ही कसमसाने लगी कि अचानक से वैशाली हवा की तेजी से उनके पास आई। मैंने मना किया था ना उसका नाम मत लेना, लेकिन तूने उसका नाम लिया, क्या समझती है तू अपने आप को? वैशाली ने शत्रुपा देवी का गला पकड़ लिया था। शत्रुपा देवी के गले से खुटखुट कर आवाज निकलने लगी, मन तो करता है तेरा गला दबा दूं, लेकिन अभी दबा भी नहीं सकती, क्योंकि तेरे कुराना सा घर लेकर जाएंगे, फिर तेरे साथ ही मैं भी अपने घर को जाऊंगी, चल इसी के सदके तुझे माफ किया। इतना कहकर वैशाली ने शत्रुपा देवी का गला छोड़ दिया। शत्रुपा देवी लंबी लंबी सांस लेने लगी थी। मेरा इंतजार पूरा हुआ, अब मैं अपने राणा सा के साथ ही उस महल में गृह प्रवेश करूंगी। शत्रुपा देवी के कानों में वैशाली बंजारण की आवाज गर्म शीशे की तरह पिघलती हुई जा रही थी। उनका बस चलता तो इस मनहूस छाया को वो अपने पोते से बहुत दूर फेंक देती, पर इस वक्त कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं थी। मजबूर होकर उन्होंने खुद को हालातों के आगे छोड़ दिया था। अब एकलिंग नाथ ही कोई ना कोई रास्ता जरूर देंगे, एक आप पर ही भरोसा है भगवान, मेरे भरोसे की नाव को डूबने मत देना। हे माँ महारानी चामुंडा, मेरे घर परिवार की रक्षा करना। हे कुलदेवी, अपने वंशजों की रक्षा करना। अपने मन में ही अपने कुलदेव और कुलदेवी को याद करते हुए शत्रुपा देवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। हर हर महादेव।